चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा। तो आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है। वैष्णवों के लिए, खास करके जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आ रहे हैं, इनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, उनके साथ में बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। जैसे कि वैष्णवाचार्यों ने गाया है, व्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो शेई बलराम होइलो नीताय। वही व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण अर्थात वृंदावन के राजा नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण, वो शची देवी और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में आए नवद्वीप, और उनका नाम हुआ निमाई या चैतन्य महाप्रभु। कि जिस तरह से वही व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण नवद्वीप में अवतीर्ण हुए, सची माता के पुत्र निमाय पंडित्य चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ठीक उसी तरह जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे वृंदावन में, वही नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। चैतन्य महाप्रभु को आविर्भाव के बाद या जन्म के बाद निमाई नाम दिया गया, क्योंकि नीम वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ था, तो प्रेम से सभी उन्हें निमाई कहते थे। और उसी तरह से प्रेम से नित्यानंद प्रभु को सभी निताय बोलते थे। चैतन्य महाप्रभु का और एक नाम है गौरांग, क्योंकि उनका रंग स्वर्ण के समान था, गौर वर्ण, इसलिए गौर अंग, तो गौरांग। तो संक्षेप में उनको गौर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से निताय और गौरांग, ये दो बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं सब वैष्णवों के लिए, निताय गौर। क्योंकि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण और बलराम इस निताय गौर के रूप में आते हैं। कलयुग की अवस्था बहुत बुरी है। हम सब देख रहे हैं कि कितना अधर्म चल रहा है सारे समाज में। किसी को भी भक्ति में रुचि नहीं है, बल्कि जो थोड़े बहुत लोग भक्ति मार्ग में आना चाहते हैं, उनके परिवार के सदस्य, उनके मित्र, उनके रिश्तेदार इत्यादि उनको पीछे खींचते हैं, उनको रोकने का प्रयास करते हैं। और जो थोड़े बहुत भक्ति में आने के इच्छुक हैं भी अच्छी तरह से प्रगति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दृढ़ता, वो दृढ़ निश्चय, वो विश्वास, वो भक्ति में नहीं आती है, बार बार पतन हो जाता है। मंदिर में आते हैं लेकिन फिर भी बीच बीच में फिर सिनेमा, टेलीविजन या कोई पुराने जो बुरी आदतें हैं उसमें फिर से पड़ जाते हैं। तो जो लोग, उनको भी इतनी कठिनाई होती है इस कलयुग में भक्ति करने के लिए, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि समाज में जो अन्य लोग हैं उनकी क्या दशा होगी, किस प्रकार से वो भगवान की भक्ति कर पाएंगे और उनके उद्धार के लिए क्या उपाय है। तो भगवान श्री कृष्ण पतित पावन है, वो सबका उद्धार करना चाहते हैं क्योंकि सभी प्राणियों के वो परम पिता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि द्वापर युग का अंत होने वाला है, कलयुग की शुरुआत होने वाली है और कलयुग में लोग इतने पतित होंगे, बिल्कुल उनको मेरी ओर, मेरी भक्ति की ओर रुचि नहीं रहेगी, तो इनके लिए क्या करना चाहिए हमें। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, हाँ एक ही उपाय है, मुझे ही जाना होगा और मुझे एक ऐसा रूप धारण करना होगा जो कि अति कृपालु होगा। आज तक जो मैंने अवतार नहीं लिया है, जो कृपा मैंने आज तक सारे ब्रह्मांड में नहीं वितरण किया है, वैसे कृपा वितरण करने के लिए मुझे एक रूप धारण करना होगा। क्योंकि अगर ऐसे कृपा में वितरण नहीं करूंगा मुफ्त में, तो यहां कलयुग के लोगों के लिए कोई उपाय नहीं होगा, सब केवल नरक में जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचकर चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। महावदान्याय, बड़े कृपालु ये अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण के, बल्कि अवतार नहीं है, वही श्री कृष्ण है। अवतार कौन है? जो श्री कृष्ण के विस्तारित रूप है, जैसे प्रभु रामचंद्र, नरसिंह देव, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, ये सब अवतार हुए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान के अवतार नहीं है, बल्कि वो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण ही है। चैतन्य महाप्रभु में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए चैतन्य वो भी अवतार ही कहलाते हैं, अवतार नहीं। और सबसे बड़े कृपालु हैं, और उनका काम क्या होगा? कृष्ण प्रेम प्रदायते। वैसे हर एक अवतार में भगवान कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, एक तरह से या दूसरे तरह से। भगवान के अनंत अवतार हैं और हर एक अवतार में भगवान का कोई ना कोई विशेष कार्य होता है जिसको संपन्न करने के लिए वो तो चैतन्य महाप्रभु का ये कौन सा विशेष कार्य था जिसको संपन्न करने के लिए वो अवतीर्ण हुए? वो है कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम को मुफ्त बांटने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कोई शर्त नहीं रखा इस संसार के लोगों के लिए, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग दो, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने शरणागति का शर्त रखा था। तुम्हें कलयुग में कितने लोग शरण में आएंगे, कितने लोग आने के इच्छुक हैं, और इच्छुक होते हुए भी शरणागति लेने में कितनी कठिनाई होती है। पीते से धोती साड़ी खींचने वाले कितने लोग होते हैं, नहीं जाओ शरण में, नहीं जाओ। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ठीक है, इस अवतार में मैं इतना उदार हो जाऊंगा कि मैं बिन पूछे मैं कर दूंगा। लेकिन मैं अकेले नहीं करूंगा, मेरे जो भक्त हैं, मेरे पार्षद हैं, उनको इस काम में लगाऊंगा और फिर इनके माध्यम से सब जगह जाऊंगा और कृष्ण प्रेम मैं बांटूंगा। और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के संग आए और जो कृष्ण प्रेम का भंडार है, उसकी जो तिजोरी है, उसको उन्होंने लूट लिया। लेकिन लूटा केवल अपने लिए नहीं रखा, सब जगह बांटने लगे। आजकल जो लूटते हैं, कोई चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, तो जो पैसा मिलता है, धन मिलता है, उसको केवल अपने पास रखते हैं, जनता को वितरण नहीं करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद ऐसे डाकू चोर नहीं थे। उन्होंने कृष्ण प्रेम के भंडार को के ऊपर डाका डाला और सब जगह इस प्रेम का वितरण किया। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ में जो और डाकू थे कृष्ण प्रेम के भंडार के, उनमें से प्रमुख हैं नित्यानंद प्रभु। कई बार ऐसे होता है, कोई जो बड़े डाकू होते हैं वो अपने पार्षदों को पहले भेजते हैं। जैसे कई हैं, एक कोई दुबई में बैठे हैं, एक हो सकता है कोई दूसरे देश में बैठे हैं, और भारत में उत्पाद करने के लिए दूसरों को भेजते हैं, उनके पार्षदों को भेजते हैं, कभी कभी खुद भी कुछ करते हैं। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कहा, हां नित्यानंद, तुम मेरे प्रमुख पार्षद हो, इस डकैती के कार्य में तुम मेरे मुख्य संगी रहोगे, कृष्ण प्रेम का वितरण करना तुम्हारा काम होगा। इसलिए बलराम, जो कि कृष्ण के बड़े भाई के रूप में आए थे पहले, इस समय बहुत ही नम्र एक उदार रूप लेकर आए हैं नित्यानंद प्रभु का। इसलिए यहां पे भक्ति विनोद ठाकुर, जो हमारे संप्रदाय में बहुत महान आचार्य रहे हैं, वो कहते हैं, बड़ो सुखेर खबर गाय, बड़ो सुखेर खबर गाय, बड़े सुख की खबर मैं सुनाने जा रहा हूं। और वो क्या खबर है? नदिया में, नवद्वीप में, सुरभि कुंज में एक बाजार खुला है। ऐसे बाजार खुलने में बड़े सुख की बात क्या है, खुशी की बात क्या होती है? रोज सब्जी का बाजार खुलता है, हर शनिवार को मिर्ची के लिए अलग अलग जगह से वहां शिवाजी उद्यान के सामने लोग लगाते हैं अपना सामान। हफ्ते में एक बार कहीं बाजार खुलता है, कहीं रोज खुलता है, तो इतने सुख की बात क्या है? क्योंकि ये बाजार बहुत विशेष है। इस बाजार में आपको ऐसे चीज मिलेगी जो किसी भी दूसरे बाजार में नहीं मिलती है, और वो क्या है? भगवान का नाम। नाम हट, हट मतलब बाजार। तो यहां पर नित्यानंद प्रभु ने भगवान के पवित्र नामों का बाजार खोल दिया है। इसलिए चलो चलो, बहुत खुशखबरी है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, सभी लोग आओ और भगवान का नाम खरीदो। लेकिन उसके लिए और भी कोई चीजें जाननी आवश्यक है। बड़ो मजार कथा आता है, बहुत मजे की बात है, हे श्रद्धा वालों लोग सुनो, इसमें अगर आपको भगवान का नाम खरीदना है तो इसमें कोई रुपए पैसे डॉलर नहीं चाहिए, इसमें सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरे मोती नहीं चाहिए। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से ही हटे ते बिकाए, केवल श्रद्धा चाहिए। आप श्रद्धा के मूल्य से इस पवित्र नाम को खरीद सकते हैं। ये क्या चीज है? श्रद्धा मतलब ये अटूट विश्वास होना कि हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण के भक्ति को प्राप्त करना, संसार के भोग में रुचि नहीं रखना, और जानना कि हमारा हित केवल भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में है। तो देखिए कितने बड़े भाग्य की बात है। गरीब आ सकता है, अमीर आ सकता है, जिसके पास श्रद्धा है वो इस नित्यानंद प्रभु के बाजार में जाकर भगवान के पवित्र नाम को खरीद सकता है। जत भक्त वृंदवासी अधिकारी देखे नाम बेचे दरो काशी, जब आप बाजार में जाते हैं कोई कमीज खरीदने के लिए, साड़ी खरीदने के लिए, हो सकता है कि उस दुकान में इतने अच्छे अच्छे कपड़े हो, लेकिन जब आप दाम पूछते हैं, अरे रे रे, देखते हैं जेब में 100 रुपए हैं और ये कमीज ये 400 रुपए की है, तो फिर आपको 100 रुपए की साड़ी, 100 रुपए की कमीज खरीदनी पड़ती है। तो ठीक उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आप जब भगवान के नाम के बाजार में आएंगे, जैसे आपका अधिकार होगा, अर्थात जैसे आपकी श्रद्धा होगी, उतना आप नाम को खरीद पाएंगे। आपकी श्रद्धा बहुत ज्यादा है, अटूट है, शुद्ध है, तो आप ज्यादा कुछ खरीद पाएंगे, कृष्ण प्रेम बहुत ज्यादा आप ले लेंगे। लेकिन आपकी श्रद्धा कम है, कोमल है, नाजुक है, तो फिर आपको कम मिलेगा। जितनी श्रद्धा है उतना आप कृष्ण नाम खरीद सकेंगे। तो इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धावान है वो बड़े पैमाने पर भगवान के नाम को अर्थात कृष्ण प्रेम को खरीद सकता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने दूसरे भजन में भी कहा है, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन। वो कहते हैं ये महाजन आए हैं, महाजन नित्यानंद प्रभु, पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण। उन्होंने ये नाम हट खोला है सब प्राणियों के लिए, जीवों के लिए, जिसमें वो आकर हरि नाम को ले सके। लेकिन इसमें क्या योग्यता चाहिए? श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। श्रद्धावान जनों, ये बाजार आपके लिए है। दूसरे लोग यहां पर नहीं आ सकते हैं, तो जितनी हमारी श्रद्धा उतना हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा, उस हद तक हम जीवन को सफल बना पाएंगे। जितनी श्रद्धा हमारे अंदर है उतना अधिकार हमारा होगा। इसलिए शास्त्रों में बताया जाता है कि अधिकार के दृष्टिकोण से तीन श्रेणी में भक्तों का विभाजन हो सकता है। एक को कहते हैं कनिष्ठ भक्त, कनिष्ठ अधिकारी, मतलब बहुत नौसुखिया भक्त है। ये विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षेप में बताएंगे। कनिष्ठ अधिकारी भक्त वो होता है जो थोड़ा बहुत भगवान में विश्वास करता है, लेकिन सोचता है कि भगवान केवल मंदिर में है, मंदिर में आके थोड़ा बहुत सर भी झुका के जाए, लेकिन मंदिर के भक्तों को या कृष्ण के भक्तों को ज्यादा कीमत नहीं देता। सोचता है ये भक्त है, भक्त को हमको क्या लेना देना, हमको भगवान से लेना देना है। एक बार जन्माष्टमी के समय एक व्यक्ति आए थे मंदिर में और दर्शन थोड़े समय के लिए बंद था, तो उन्होंने एक दूसरे भक्त से कहा कि हम यहां आप सब भक्तों को थोड़ी देखने आते हैं, हम भगवान को देखने आते हैं, और आप लोग पर्दा बंद रखते हो तो फिर हमें यूं ही जाना पड़ता है। हाँ, भगवान का दर्शन न मिले ये दुख की बात है, और अगर किसी को दुख लग रहा हो तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब है कि उतनी तो श्रद्धा है कि भगवान और मूर्ति में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनको विश्वास नहीं था कि वैष्णवों का दर्शन करना भी बहुत जरूरी है, वैष्णवों के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, सीधे डायरेक्ट नहीं जा सकते। वैष्णवों के बीच में रहकर जब वैष्णव चिट्ठी भेजेंगे भगवान को कि प्रभु इनको जरा आपके घर में आप एंट्री दीजिए, तो फिर भगवान का ठीक है, हा? तो चलो हम करेंगे। जैसे हर जगह आजकल भारत में ये चलता है ना, नौकरी के लिए कोई इस चीज के लिए उस चीज के लिए, हमें कोई ना कोई व्यक्ति की नोट चाहिए, पहचान चाहिए होती है, तो भगवान के पास भी जाना है तो पहचान वाले व्यक्तियों से हमें जाना चाहिए। तो जिन व्यक्तियों को थोड़ी बहुत भगवान के विग्रह में या भगवान में श्रद्धा है लेकिन भगवान के भक्तों में कम है, उनकी श्रद्धा बहुत कोमल है, उनको शास्त्रों का ज्ञान बहुत कम है या नहीं है, ऐसे लोगों को कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। उनका अधिकार बहुत कम है भगवत प्रेम प्राप्त करने में, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त कहलाते हैं। इसके ऊपर है मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी वो होता है जिनको अच्छी तरह से मालूम होता है कि भगवान का महत्व क्या है और भगवान के भक्तों का महत्व क्या है। कनिष्ठ अधिकारी से भी ज्यादा श्रद्धावान होता है, उसको शास्त्रों का भी ज्ञान थोड़ा बहुत हो जाता है और हो सकता है कि दूसरों को भी थोड़ा कुछ समझा सकता है, लेकिन शायद उसमें कोई सीमा हो। शास्त्र में विश्वास है और वो भेदभाव करता है, भगवान के चरणों में आके सेवा करता है, जो वरिष्ठ भक्त होते हैं उनकी सेवा करता है, उनसे उपदेश ग्रहण करता है, जो उसके बराबर के हैं भक्त उनके साथ प्रेम से रहता है, झगड़े नहीं करता, जो मासूम हैं, जो अभक्त होते हैं उनको कृष्ण नाम देता है, और जो अभक्त हैं लेकिन ईर्ष्यालु हैं, जो हमेशा निंदा करते हैं भगवान की, उनसे दूर रहता। तो ये है मध्यम अधिकारी। उसका अधिकार मध्यम स्तर का है, अभी तक उसको प्रगति करनी है। और उससे ऊंचा है उत्तम अधिकारी, श्रेष्ठ भक्त, शुद्ध भक्त, जो हर जगह भगवान को देखता है। मूर्ति में तो देखता ही है, लेकिन हर कण में भगवान को देखता है, भगवान के अलावा और कुछ नहीं जानता है वो। शास्त्रों में, भगवान के संदेश में अटूट श्रद्धा है, शास्त्रों की गहराई से जानकारी है, और ज्ञान होने की वजह से सबको वो कृष्ण भक्ति का संदेश पहुंचा सकते हैं और उनको शास्त्रों के आधार पर वो समझा सकते हैं। उनके हृदय में श्रद्धा जागृत करने की शक्ति होती है उत्तम अधिकारी में। तो इस प्रकार से ये अधिकार का प्रश्न आता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर यहां कहते हैं, अधिकारी देखे नाम दे बेचे दारो काशी, कि नित्यानंद प्रभु देखते हैं किसका कितना अधिकार है, कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार वो सबको भक्ति देते जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे अधिकार को हम बढ़ाएं। भक्तों के संग में बार बार रोज आने से हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। यदि नाम किनबे भाई अमर संगे चलो महाजनेर कछे जाए, तो भक्ति विनोद ठाकुर सबको पूछ रहे हैं, नाम खरीदना है भगवान का, चलो 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 मेरे साथ चलो महाजनेर कछे जाए, नित्यानंद प्रभु के पास में जाते हैं। तुम्हें किनबे कृष्ण नाम दस्तुर लोई बो आमी पूर्ण होवे काम, हम दोनों का फायदा होगा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, देखो तुम नाम खरीदोगे और मैं दलाली लूंगा, मुझे कमीशन मिलेगा, मेरा भी लाभ होगा, तुम्हारा भी लाभ होगा, सबका लाभ होगा और नित्यानंद प्रभु का भी लाभ होगा, क्योंकि वो बेच रहे हैं, हम तीनों का लाभ होगा। चलो, जैसे व्यवसाय में होता है बीच में जो एजेंट रहता है वो कमीशन लेता है, तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं मेरे फायदे के लिए भी है, आपको अगर मैं कृष्ण नाम दे दूंगा तो मुझे थोड़ी भक्ति का कमीशन मिल जाएगा, भगवान बोलेंगे कि चलो ये भी भक्ति में ले आ रहे हैं दूसरों को, उनको भी थोड़ी कृपा दे दो। इसका मतलब है कि आपको मुफ्त का अगर कमीशन चाहिए भक्ति में, दलाली आपको दलाल बनना चाहिए, भगवान का दलाल बन के सबको ले आना कृष्ण मंदिर में, कृष्ण भक्ति के पथ पर। इसलिए कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हो तार ए देश, जिसको देखो उसे कृष्ण भगवान का उपदेश दे दो, इस प्रकार से गुरु होकर सारे भूमि को पावन कर दो। इसका मतलब है कि हमारे परिवार के सदस्य हो, मित्र हो, हमारे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, सबको हमें भगवान कृष्ण के उपदेश के बारे में बताना चाहिए। हो सकता है 100 लोगों में से 10 लोग आए, लेकिन 10 लोगों की दलाली तो आपको मिलेगी ना। लेकिन देखिए, यहां दलाली करने में और बाहर दलाली करने में बहुत अंतर होता है। जब बाहर आप 100 ग्राहक के पास जाते हैं दस आपसे खरीदते हैं तो आपको दस लोगों की ही दलाली मिलती है, नब्बे लोगों की नहीं मिलती। लेकिन यहां पे क्या होता है, जो दस भक्ति में आते हैं उनकी ओर से दलाली तो आपको मिलती ही है, लेकिन जो दूसरे नब्बे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो ये बेचारा हमारा दलाल है, इतना प्रयत्न कर रहा है मेरे लिए, मुफ्त में दलाली दे देता हूं। तो भगवान हमारा प्रयत्न देखते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण से भी कृपालु है चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु से भी कृपालु है नित्यानंद प्रभु, इसलिए अति कृपालु है। केवल देखते हैं प्रयत्न कर रहा है ये व्यक्ति, तो चलो दलाली दे दो। और देखिए और चमत्कार की बात, इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई कर नहीं, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। और एक अद्भुत बात, ये धन की चोरी नहीं हो सकती है। बाहर के व्यवसाय में जब आप दलाली कमाते हैं हमेशा डर रहता है, क्या डर रहता है, बड़ा बड़ा ताला चाहिए घर में, सेफ डिपॉजिट लॉकर में बैंक में रखना है, हमेशा चिंता रहती है कोई चोर आएंगे, और हमारे संसार के धन का घटन होते रहता है महंगाई की वजह से। आज हमने 10 रुपए कमाए, कल इसकी कीमत 5 रुपए के बराबर हो जाएगी। लेकिन ये धन जो है ये कम नहीं होगा, यहां तक कि मृत्यु के समय भी इसका घटन नहीं होगा, नाश होने की बात तो दूर है, हमेशा आपके साथ में रहेगा। तो ऐसा दलाल बनना है, ऐसे धन की कमाई होनी है, तो इसलिए जितनी श्रद्धा आपके अंदर है उतना आप कमा सकेंगे। और बड़ो दयाल नित्यानंद श्रद्धा मात्र लोए देन परम आनंद, केवल श्रद्धा रखिए और नित्यानंद प्रभु आपको परम आनंद देंगे। संसार की कमाई करने से आनंद मिलता है, सरदर्द मिलता है नहीं, सही बात है। हम तो नहीं कमाते हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम देखते हैं संसार में कितना सरदर्द होता है पैसे कमाने के लिए, और पैसा आने के बाद भी ऐसा नहीं कि आदमी सुखी बनता है, कितने सरदर्द आ जाते हैं। ऐसा होता है कभी कभी आदमी सोचता है कि चलो पैसे नहीं होते अच्छा होता, लेकिन फिर भी माया का प्रभाव इतना प्रभावशाली है कि फिर से पैसे के पीछे आदमी लग जाता है। लेकिन ऐसे धन कमाने में कोई सरदर्द नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल परम आनंद। ये नित्यानंद प्रभु की भेंट है हम सबके लिए। एक बार देख ले चखे जौल, गौर बोले निताय देन सकल संभव। नित्यानंद प्रभु वो चैतन्य महाप्रभु के असिस्टेंट हैं, उनके सेवक हैं, और आदर्श सेवक होने के नाते वो चाहते हैं कि सभी लोग गौर नाम का उच्चारण करें, गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के पवित्र नामों का उच्चारण करें। और जब वो देखते हैं कि कोई गौरांग महाप्रभु का नाम का उच्चारण करते करते उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं प्रेम के, तो नित्यानंद प्रभु इतने खुश हो जाते हैं कि उसको सारे आशीर्वाद कृपा दे देते हैं, सारी संपत्ति दे देते हैं। देन शुद्ध कृष्ण शिक्षा, जाति धन विद्या बल न करे अपेक्षा। कृष्ण प्रेम देते हैं, कृष्ण शिक्षा देते हैं, लेकिन इसमें कोई भेदभाव नहीं है। नित्यानंद प्रभु ये नहीं देखते कि आपकी जाति कौन सी है। भारतवर्ष में ये बड़ा सरदर्द है ना, ये जाति वो जाति, और एक जाति के भीतर में भी कितने और उपजाति हैं। शादी के समय कितना तकलीफ होता है, लेकिन यहां नित्यानंद प्रभु बोलते हैं अपने जाति वाति को भूल जाइए, हम सब जीवात्मा हैं। कौन से देश के हैं, कौन से प्रांत के हैं, कौन सी भाषा आप बोलते हैं, आप अमीर घराने के हैं, जाति धन विद्या बल न करे अपेक्षा। आप गरीब हैं कि अमीर हैं, आप बड़े बलवान हैं या आप बड़े कमजोर हैं, आपके पास आप संस्कृत के पंडित हैं, आप अशिक्षित हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नित्यानंद प्रभु कहते हैं सभी लोग आ जाइए, सभी आइए और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर दीजिए। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जानते हैं आजकल किसकी योग्यता है। आजकल मनुष्य समाज में हमने इतने विभाजन कर दिए हैं और धर्मों में भी हम देखते हैं इतने विभाजन हो गए हैं कि भगवान के करीब पहुंचने के बजाय हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए कलयुग के लिए ये एकमात्र धर्म है कृष्ण भक्ति का धर्म, जो सबसे ऊंचा धर्म है। और इस धर्म को, इस आंदोलन को फैलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु खास आए हैं, केवल 500 साल पूर्व आए थे। तो इसलिए ये एक परिवार है कृष्ण भक्तों का। कृष्ण भगवान केवल हिंदुओं के भगवान नहीं है, केवल भारतीय लोगों के भगवान नहीं है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सब प्राणियों के भगवान हैं। ठीक उसी तरह चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का आंदोलन केवल वैष्णवों के लिए नहीं है, केवल हिंदुओं के लिए, भारतीय लोगों के लिए नहीं है, केवल मनुष्य जाति के लिए भी नहीं है, ये ब्रह्मांड के सारे प्राणियों के लिए है। इसलिए कोई ये संकोच न करे कि मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ये जाति का हूं, वो जाति का हूं, मैं गरीब हूं। धन की भी कोई अपेक्षा नहीं है। कितने बार लोग हमें मिलते हैं और पूछते हैं कि आपके मंदिर में आने को कोई हमें मेंबर बनना पड़ेगा, पैसे देकर आना पड़ेगा? नहीं, बल्कि देने की बजाय तो दूर है, आपको ऐसा धन मिलेगा जिसके सामने पैसे की कीमत कुछ भी नहीं होगी। इसलिए हर व्यक्ति का स्वागत यहां पर इस आंदोलन में है। यही एकमात्र आंदोलन है जो सारे विश्व भर में फैलेगा। ये कलयुग का युग धर्म है। श्रील प्रभुपाद जी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के प्रमुख सेनापति हैं इस कलयुग में, उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा घर बनाना चाहता हूं जिसमें सारे विश्व भर के लोग एक साथ में निवास कर सके। सही बात है, एक घर में कितने तकलीफ होते हैं आप जानते हैं ना, पति पत्नी में, बच्चों में, माता पिता में, भाई बहन में, कितने तकलीफ। तो एक छोटे से कुटुंब में इतनी तकलीफ, तो आप समझ सकते हैं इतने बड़े कुटुंब में, विश्व वसुधैव कुटुंबकम, इसमें कितने सारे झगड़े चल रहे हैं। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के आंदोलन में सभी लोग एक परिवार होकर कृष्ण भक्ति कर सकते हैं और सारा विश्व भगवान के धाम में वापस जा सकता है। इसलिए कलयुग होते हुए भी ये स्वर्ण युग कहलाता है। स्वर्ण युग की शुरुआत अभी अभी हुई है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ये जो भी कलयुग के हम दुर्गुण देख रहे हैं उनका नाश होता जाएगा, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के बल पर। फिर सभी लोग कृष्ण भक्त हो जाएंगे और धुआंधार कीर्तन सब जगह गूंजेगा। क्या आप सोचते हैं कि यह संभव नहीं है? ये कैसे हो सकता है कि अभी इतनी दुर्गति है, इतनी दुर्दशा है सारे समाज में, सभी लोग कृष्ण भक्त बन सकते हैं? यहां बेलगाम में लाख, कितने लाखों लोग हैं, जनसंख्या क्या होगी बेलगाम की? 6-8 लाख। और कृष्ण भक्त कितने हैं? बहुत कम। तो हम अंदाज लगा सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि अरे 8 लाख के शहर में केवल 400-500 हजार 2 हजार लोग भक्ति करते हैं, 10 हजार समझ लीजिए, और सारे विश्व भर की जनसंख्या कितनी है? करोड़ों में है। तो फिर सभी लोग कृष्ण भक्त होंगे? ये संभव है? है, और ये होगा, क्योंकि ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आछे जातो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई के मोरना। उन्होंने कहा कि पृथ्वी में जितने सारे नगर, गांव इत्यादि हैं, सब में मेरे पवित्र नाम गूंजते रहेंगे। और नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि कई साल बाद मेरा एक सेनापति भक्त आएगा जो हर एक शहर में, हर एक देश में जाकर मेरे नामों का प्रचार करेगा। तो कौन थे वो भक्त जिन्होंने इस कृष्ण भक्ति के धर्म को सब जगह फैलाया? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, नित्यानंद प्रभु के सेनापति भक्त। क्या 50 साल पहले किसी ने कल्पना की होगी कि ऐसे एक दिन आएगा जब हर एक देश में कृष्ण भक्त रहेंगे, हर एक देश में लोग गीता भागवत पढ़ेंगे, शहर के सारे महत्वपूर्ण शहरों में रथ यात्रा निकलेगी, जगन्नाथ भगवान अपना दर्शन देंगे सब जगह, हर एक जगह लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन करेंगे? अगर 50 साल पहले कोई व्यक्ति ऐसे कहता तो लोग कहते, अरे क्या पागलपन की बात करती है, अवश्य ये तो संभव है ही नहीं, भारत में भी लोग इतने नास्तिक होते जा रहे हैं तो दूसरे देशों में कैसे ये हो सकता है। लेकिन 50 साल की बात तो दूर है, 100 साल से अधिक पहले भक्ति विनोद ठाकुर जिन्होंने ये भजन लिखा है उन्होंने भविष्यवाणी की थी और उन्होंने कहा था, कब वो दिन आएगा जब हाई कोर्ट में जाने वाला जो जज है, न्यायाधीश है, वो वैष्णव तिलक पहनकर वो न्याय देने बैठेगा। कब वो दिन आएगा जब जर्मनी से, रशिया से, अमेरिका से, जापान से भक्त, कंठी मालाधारी भक्त जय सचिनंदन गौर हरि का कीर्तन करते हुए नवद्वीप के सड़कों में झूमते हुए, नृत्य करते हुए, मृदंग करताल बजाते हुए वो घूमेंगे फिरेंगे? कब वो दिन आएगा? भक्ति विनोद ठाकुर को मालूम था कि ये दिन आएगा, क्योंकि उन्होंने भी, उनको चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में अटूट श्रद्धा थी, बल्कि इस आंदोलन के आधुनिक काल के प्रमुख व्यक्ति भक्ति विनोद ठाकुर है, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रशिक्षण दिया, उनको स्फूरित किया कि ये प्रचार करना चाहिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन्होंने 64 मंदिर खोले भारत में एक अकेले व्यक्ति ने, और कृष्ण भक्ति के सिद्धांत का की स्थापना की और गौरांग महाप्रभु के संदेश को सब जगह फैलाया। और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे। ये परंपरा चलती आ रही है। अब प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में कितने सारे भक्त हैं जो जगह जगह जाकर ये नित्यानंद प्रभु की कृपा को बांट रहे हैं। लोग मुसलमान देशों में भी छुप छुप कर कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपने जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे साम्यवादी देशों में वो भी ऐसे छुप छुप कर भक्ति का प्रचार करते हैं। रशिया में ऐसे कितने भक्त हैं जिनको पहले 20 साल पहले गिरफ्तार किया गया, पागलों के दवाखाने में उनको डाला गया, उनको नाना प्रकार के इंजेक्शन दिए गए, उनको पागल वास्तव में करा गया, केवल इसलिए कि वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे। लेकिन आंदोलन वहां रुका नहीं बल्कि बढ़ता गया, और आज रशिया में भी 50 से ज्यादा शहरों में, 50 से ज्यादा बल्कि 100-200 भी हो सकते हैं शहरों में, छोटे छोटे या बड़े बड़े मंदिर हैं जहां अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्त कृष्ण भक्ति करते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं, भगवत गीता भागवत का प्रचार करते हैं। कहां है रशिया देश? इतनी ठंडी है वहां पर कि -50 डिग्री तक वहां पर तापमान जाता है। यहां पर तापमान कितना, अगर 10 डिग्री तक जाए तो हम लोग कितनी ठंडी हमको लगती है, वहां पर -50 तक जाता है, तो सोचिए कितनी ठंडी। ऐसे अवस्था में भी लोग वहां पर कृष्ण भक्ति करते हैं, तो ये है नित्यानंद प्रभु की कृपा। उन्होंने कहा कोई इसमें भेदभाव नहीं होगा, सभी लोग आ जाएं, यहां पर कृष्ण भक्ति करें। अमनि छाड़े माया जाल, गृहे थाको वने थाको न थाके जंजाल। इसमें संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भक्ति मार्ग में आने के लिए बहुत बड़ी अड़चन है। सभी लोग घबराते हैं, अरे हमें आकर संन्यास तो नहीं लेना पड़ेगा? तो नहीं, गृह थाको वने थाको न थाके जंजाल, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आप घर में रहकर भजन करो या आप जंगल में जाके सन्यासी बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नित्यानंद प्रभु का नाम हट सबके लिए है, इस नाम हट में सन्यासी हैं, वानप्रस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, सभी लोगों के लिए ये बाजार है। जो भी चाहे आ सकता है और इसमें आकर माया जाल से छूट सकता है। आर नहीं को कलीर भय, अचंडाले देने नाम निताय दया मोय। ये कलयुग बड़ा भयानक है। कलयुग के लक्षण हम देखते हैं, जैसे जैसे हर एक दिन बीतता जाता है, हम देखते हैं क्या दशा होगी दुनिया की। जिस तरह से लोग बिगड़ते जा रहे हैं, पतित होते जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति जिसके हृदय में थोड़ बहुत सोचने की भावना है, वो देखता है कि क्या हो रहा है समाज का, कल किस तरह से ये समाज टिकेगा। लेकिन भक्ति विनोद क्या कहते हैं, आर नहीं को कली भय, अभी कली का भय नहीं है। ये जो बहुत भयंकर युग है कलयुग का, इसे कोई डर नहीं है, क्योंकि आचांडाले देन नाम कृष्ण निताय दया मोय। चांडालों को भी नित्यानंद प्रभु कृष्ण नाम दे रहे हैं, जो कि ऊंची से ऊंचा उपहार है। चंडाल मतलब कौन, कुत्ते का मांस खाने वाला, बहुत ही नीच व्यक्ति माना जाता है। आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग चांडालों की वृत्ति को ग्रहण कर रहे हैं। मांसाहार करने की संख्या तो बढ़ी रही है, हर एक आदमी आजकल मांसाहार पीना चाहता है, शराब पीना चाहता है, परस्त्री संग करना चाहता है, जुआ खेलना चाहता है, ये सोचते हुए कि ये आजकल का फैशन है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम पिछड़े हुए माने जाएंगे। हमें प्रगतिशील होना है, समय के साथ आगे जाना है, पाश्चात्य देशों के साथ साथ हमें कदम में कदम मिलाकर चलना चाहिए। इसलिए अच्छे अच्छे सुसंस्कृत धार्मिक परिवार के लोग भी आजकल सारे बुरे कार्य करते हैं, गाय का मांस भी खाते हैं, क्या नहीं पाप करते हैं। तो कुत्ते का मांस खाने वाले, गाय के मांस खाने वाले, ऐसे सब लोग भरे पड़े हैं आजकल के आधुनिक समाज में, दुनिया भर में, हर एक देश में। और आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि कुत्ते की मांस तो दूर है, लेकिन मनुष्य का मांस भी खाने वाले लोग आजकल हो रहे हैं। आप सोचेंगे कि हाँ हाँ, वो जंगलों के भीतर जो कई आदिवासी लोग के टाइप के लोग होते हैं अफ्रीका में, उधर होंगे। नहीं, ये बड़े बड़े शहरों में, न्यूयॉर्क, हांगकांग, सिंगापुर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहरों में जरा अट्टालिकाएं हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, अच्छे अच्छे रस्ते हैं, ऐसे शहरों में होटल हैं, जहां छोटे छोटे बोतलों में जो गर्भपात किए हुए जो बच्चे हैं, मरे हुए बच्चे, उन आपको अगर 5 साल पहले कोई कहा होता आप विश्वास करते, लेकिन ये सच्ची बात है। तो ऐसे लोग आजकल समाज में हैं। तो चांडाल तो बहुत उन्नत है उनके हिसाब से, तो देखा जाए तो उच्च कोटि का व्यक्ति है चांडाल। वो तो केवल एक पशु का मांस खा रहा है, लेकिन आजकल मनुष्य के बच्चे का मांस खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। टाई सूट बूट पहनने वाले लोग, तो ऐसे लोगों के लिए नित्यानंद प्रभु ने यह आंदोलन खोला है। सब जगह सब तरह के लोग आ सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए आगे चल के भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भक्ति विनोद डाकी कोई निताय चरण बिना आर नहीं आश्रय। इसलिए नित्यानंद प्रभु के अलावा और कोई आश्रय हमारा नहीं है, नित्यानंद प्रभु के चरण ही हमारे सब कुछ हैं। इसीलिए नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में हमें पार्षद हैं। आपके कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, और चैतन्य महाप्रभु के कृपा के बिना कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करना ये बहुत आवश्यक है। जहां चैतन्य महाप्रभु हैं वहां नित्यानंद प्रभु हैं, जहां नित्यानंद प्रभु हैं वहां चैतन्य महाप्रभु हैं। दोनों को हमें कभी भी अलग दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कई बार लोग चैतन्य महाप्रभु में विश्वास रखते हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु में विश्वास नहीं रखते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं नहीं, ये बहुत खतरनाक होगा। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण भक्त थे जो चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत विश्वास रखते थे। कृष्ण भक्त थे, बड़े सज्जन थे, सुसंस्कृत घराने के थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति उनके हृदय में थोड़ा संशय था, क्योंकि नित्यानंद प्रभु अपने आप को अवधूत के रूप में पेश करते थे समाज में। अवधूत कौन है? अवधूत वो है जो सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता है, कैसे भी कपड़े पहनता है, कैसे भी व्यवहार है, कुछ भी करता है साधु, अपने ही मन में मस्त रहता है, भगवत चिंतन में मस्त रहता है, लेकिन समाज के बारे में, समाज के नियमों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता। तो नित्यानंद प्रभु के कार्य कभी कभी इतने अद्भुत हो जाते थे कि कई लोग उनको गलत समझते थे। जो उनके भक्त थे वो अच्छी तरह से समझ पाते थे, और अगर नहीं भी समझते थे तो श्रद्धा रहती थी कि नित्यानंद प्रभु जो करते हमारे बुद्धि के बाहर है, हम समझ नहीं सकते। एक कोई मनुष्य हो जो शुद्ध वैष्णव हो, उसके कार्यों को भी हमें इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेय न बुझाए। शुद्ध वैष्णव होते हैं वो कभी कभी क्यों किस तरह के कार्य करते हैं वो समझना मुश्किल हो जाता है। और नित्यानंद प्रभु तो कोई साधारण वैष्णव नहीं है, वो तो साक्षात बलराम है। तो वो अगर अवधूत का वेश धारण करें और कोई अद्भुत कार्य करें तो अवश्य उनके प्रति संशय की भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसे हुआ कि कई लोग थे जो उनके प्रति संदेह रखते थे। तो ये ब्राह्मण जो है वो एक बार जगन्नाथपुरी में गया जहां चैतन्य महाप्रभु निवास करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के पास आकर वो कहने लगे कि हे प्रभु, आपके चरणों के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा है, हम आपके भक्त हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे एक प्रश्न का जवाब कृपा करके दें। और वो प्रश्न ये है कि नित्यानंद प्रभु ये कौन है, क्या है? हमारे मन में उनके प्रति थोड़ा संशय हो जाता है, क्योंकि लोग तो उनको कहते हैं सन्यासी है, अवधूत है, ये है, लेकिन इनके व्यवहार से कुछ समय हमारा मन डावाडोल हो रहा है। लोग कहते हैं सन्यासी हैं, लेकिन हमारे जैसे वस्त्र पहनते हैं, बड़े चमकदार वस्त्र पहनते हैं, रेशम के ऐसे वैसे, और फिर नाना प्रकार के गहने, सोने, चांदी, हीरे, मोती, रत्न अपने शरीर पर पहनते हैं। अभी सन्यासी तो ऐसे गहने वगैरह नहीं पहनने चाहिए, ये तो पहनते हैं। और लोग कहते हैं कि ये सन्यासी हैं, लेकिन सन्यासी डंडा रखने के बजाय वो एक लोहे का डंडा पकड़ते हैं, पता नहीं चलता है क्या करते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी कुछ भी बोलते हैं, कुछ हमें पता नहीं चलता कि ये नित्यानंद प्रभु जो है ये कौन है, कैसे है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्योंकि वो जानते थे कि ये ब्राह्मण उनके शुद्ध भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि ये नित्यानंद प्रभु के प्रति कोई अपराध नहीं करे। तो कहने लगे कि देखो, जो इस संसार में बड़े व्यक्ति होते हैं, जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, अगर नीति के दृष्टि से उनमें कोई गड़बड़ हो भी तो उनकी निंदा हमें कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से सूरज एक गंदे जगह को भी शुद्ध कर सकता है, लेकिन सूरज की निंदा आप नहीं कर सकते, सूरज प्रदूषित नहीं होता उस गंदगी से। तो उसी प्रकार से जब कोई महान व्यक्ति कोई ऐसे कार्य करता है जो हमारे साधारण नीति के दृष्टि से गलत समझा जाए, फिर भी वो व्यक्ति उस गलती से प्रभावित नहीं होता है। जैसे अगर कोई कचरे को आप आग में फेंक दें तो आग क्या करेगी, उस कचरे से प्रभावित नहीं होगी, बल्कि उस कचरे को जला डालेगी। ठीक उसी प्रकार से जब ऐसे कोई महान हस्ती होते हैं, गलत काम करते हुए भी उनके ऊपर प्रभाव नहीं रहता, फिर भी ऐसे लोगों का नकल हमें कभी नहीं करना चाहिए। जैसे कि शिवजी ने सागर, एक विष का सागर का पान किया। तो कोई व्यक्ति अगर शिव जी का नकल करना चाहता है तो वो तो मर ही जाएगा। इसलिए महान व्यक्तियों की नकल कभी नहीं करनी चाहिए। और हे ब्राह्मण, जरा ध्यान से सुनो कि ये जो है ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात महान वैष्णव है, ये हमारे नित्य साथी हैं। और ऐसे महान वैष्णवों की निंदा करने से, उनके प्रति संशय रखने से, उनके ऊपर हंसने से, मजाक उड़ाने से कितनी हमारी दुर्गति होती है, इसके बारे में तुम्हें मैं कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। तो चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे कि मैं तुम्हें एक श्रीमद् भागवत की कहानी सुनाता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, उनसे उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, और जब शिक्षण समाप्त हो गया तो वो आकर उन्होंने सांदीपनि मुनि से कहा कि गुरु महाराज, हम क्या दीक्षा दे सकते हैं, आप क्या दक्षिणा दे सकते हैं आपको। तो सांदीपनि मुनि ने अपने पत्नी से सलाह मशवरा किया और सोचकर फिर कहने लगे कि हे कृष्ण, हे बलराम, तुम दोनों साधारण बच्चे नहीं हो, मैं तो समझ गया, तुमने 60 दिन में वो सब सीख लिया है जिसको सीखने के लिए तुम्हारे दूसरे छात्रों को, विद्यार्थियों को कितने साल लग जाते हैं, और तुमने केवल एक बार सुनकर तुम इतने निपुण हो गए हो इस कला में या उस बात में कि मैं जान सकता हूं कि तुम कोई साधारण बच्चे नहीं हो, इसलिए मैं भी तुमसे कोई साधारण दक्षिणा नहीं मांगूंगा। असाधारण बच्चा, असाधारण दक्षिणा। तो कृष्ण भगवान ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा, आप जो कहना चाहेंगे, आप जो भी दक्षिणा चाहेंगे, हम देने के लिए तैयार हैं। सांदीपनि मुनि ने कहा कि हमारे एक बच्चा था, बच्चे का देहांत हो गया, तो खास करके हमारी पत्नी की इच्छा है कि यमराज के दरबार से इस बच्चे को आप वापस ले आओ। तो कृष्ण भगवान ने कहा, अवश्य। तो सीधे गए यमराज के दरबार में, यमराज के दरबार में जाकर यमराज से उस बच्चे को वापस ले आए, उसके सारे कर्म नष्ट कर दिए। ये लंबी कहानी है, श्रीमद् भागवत में संक्षेप में बोल रहे हैं। तो बच्चे को वापस लाया, सांदीपनि मुनि को के हवाले कर दिए। सांदीपनि मुनि और उनकी पत्नी इतने खुश हो गए और उन्होंने हृदय से आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है कभी भी तुम भूलोगे नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भी हम सीखते हैं हम सब भूल जाते हैं ना। स्कूल में हमने क्या पढ़ा था, कॉलेज में क्या पढ़ा क्या नहीं, सब भूल गए हम। लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी मैंने पढ़ाया है तुमको, तुम कभी भी भूलोगे नहीं। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और सांदीपनि मुनि ने बहुत कुछ सिखाया था, भौतिक, आध्यात्मिक, हर चीज। तो जब माता देवकी ने यह सुना, कई साल बाद में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका लीला कर रहे थे, तो देवकी ने भी एक बार कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने तुम्हें प्राप्त कर लिया है, अब तुम यहां मेरे साथ में रहते हो, लेकिन फिर भी एक बात का दुख कई सालों से मेरे हृदय में है, और वो ये है कि मेरे भाई कंस ने मेरे 6 बच्चों की हत्या कर दी थी जन्म के तुरंत बाद, और मैं इनकी सेवा नहीं कर पाई, इनको प्रेम नहीं कर पाई, इस बात का बहुत दुख है मुझे। तो मैंने सुना है कि तुमने तुम्हारे गुरु सांदीपनि मुनि के बच्चे को यमराज के दरबार से लाया, तो मेरे 6 बच्चों को भी लाओ। अब याद रखिए कि इस समय भगवान श्री कृष्ण के लड़के हो गए थे, लड़कों के लड़के हो गए थे, मतलब वो दादा हो गए थे, और माता देवकी अब कह रही है कि वो 6 बच्चों को वापस ले आना। तो भगवान ने कहा, तुरंत ले आता हूं। तो भगवान निकल पड़े, यमराज के दरबार में नहीं थे, उन्होंने कहा बलि महाराज के घर में है। तो सुतल लोक में गए जहां वामन देव ने उनको बढ़िया स्थान दिया था। तो बलि महाराज ने 5 जन्य का शंख सुना और बहुत ही जल्दी आ गए बाहर, कृष्ण और बलराम का स्वागत करने के लिए सुंदर स्तुतियां बोलने लगे। और फिर यमराज बोलने, बलि महाराज बोलने लगे, हमारा राज्य, हमारा जीवन धन्य हो गया कि आप दोनों कृष्ण और बलराम यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं, तो हमने आपको सेवा का, आपने हमें सेवा का मौका दिया है, बताइए क्या सेवा करें आपकी। तो कृष्ण भगवान बोलने लगे कि हमारी माता देवकी के 6 पुत्र शायद आपके यहाँ हैं, उनको हम वापस ले जाना चाहते हैं। और इसके पीछे कारण ये है, हे बलि महाराज जरा ध्यान से सुनो, इसके पीछे क्या इतिहास है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के कई पुत्र हुए, ऋषि जो चल के प्रजापति हुए, ऋषि मुनि हुए इत्यादि, और उनमें से एक पुत्र का नाम था ऋषि मरीच, मरीचि, और मरीचि ऋषि के 6 पुत्र थे। एक बार ऐसे हुआ कि ब्रह्मा जी जो कि सृष्टिकर्ता है, महान वैष्णव भी हैं, और भगवान कृष्ण ने उनको इतनी शक्ति दी है कि वो सृष्टि की रचना कर सकते हैं, जो कि कोई छोटी बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी की एक पुत्री थी, लेकिन भगवान की योजना से ब्रह्मा जी का मन डावाडोल हो गया, भ्रमित हो गए, और उनको स्वयं अपने पुत्री के प्रति आकर्षण हो गया और पुत्री का पीछा करने लगे। तो उस समय मरीचि ऋषि के जो पुत्र थे वो हंसने लगे और उन्होंने निंदा की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी तो ब्राह्मण हैं और महान व्यक्ति हैं, और ब्रह्मा जी की निंदा नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने उस समय अपना सूक्ष्म देह त्याग दिया, अपने आप को संभाल लिया, लेकिन मरीचि ऋषि के जो 6 पुत्र थे उनके ऊपर उनके प्रति अपराध हो गया, उन्होंने बड़ा अपराध किया, इसके लिए उनको क्या परिणाम मिला कि उनको अगले जन्म में हिरण्यकश्यप के कुटुंब में जन्म लेना पड़ा। 6 पुत्र वहां बने और हिरण्यकश्यप के रिश्तेदार थे और उनके पुत्र बने ये 6 मरीचि ऋषि के पुत्र, और उनको ये शाप हुआ कि अगले जन्म में इनके पिता ही इनका वध, इनकी हत्या करने वाला है। फिर आगे अगले जन्म में ये पिता जो थे ये कंस बने, और ये 6 लड़के जो हैं बच्चे वो देवकी के पुत्र बने। तो कंस ने इन 6 बच्चों की हत्या कर दी जो पूर्व जन्म में उनके ही लड़के थे। तो कृष्ण भगवान ने बलि महाराज को समझाया कि अब मैं वापस उनको ले जाना चाहता हूं, उनका उद्धार कराना चाहता हूं, ताकि वो अपने अपने धाम में लौटकर चले जाए। और फिर यमराज ने 6 बच्चों को दिया, कृष्ण भगवान ने 6 बच्चों को ले गए, देवकी माता को दे दिया, देवकी माता ने स्तनपान कराया उनको, और क्योंकि कृष्ण भगवान ने वो भी दूध का पान किया था, कृष्ण भगवान का स्पर्श हुआ था, इसलिए इन 6 बच्चों का उद्धार हो गया। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु फिर उस ब्राह्मण से कहने लगे कि देखो, जब कोई महान व्यक्ति होते हैं उनकी निंदा करने से, उनके ऊपर हंसने से, मजाक करने से उनका देखो क्या दशा होती है। इसलिए नित्यानंद प्रभु को कभी भी गलत नहीं समझो। जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता और मुझे मानता है, वो ऐसे है कि जो कृष्ण को मानता है शिव जी को नहीं मानता और शिव जी का तिरस्कार करता है। ये भारत में बहुत चलता है, कोई शिव जी को मानते हैं कृष्ण का तिरस्कार करते हैं, कृष्ण को मानते हैं शिव जी की तिरस्कार करते हैं, और कोई ऐसे हैं कि सभी को परम भगवान मानते हैं। गणेश जी भी परम भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, शिव जी भी भगवान है। तो यहां भारतवर्ष में नाना धारणाएं हैं लोगों के। नित्यानंद प्रभु जब तीर्थ यात्रा में दक्षिण भारत में गए थे, उन्होंने देखा कि जो शैव थे और वैष्णव थे दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते थे। आजकल भी दक्षिण भारत में बहुत झगड़े चलते हैं। जो शैव संप्रदाय के होते हैं वो शिव जी को मानते हैं, विष्णु की निंदा करते हैं, वैष्णवों को देखना भी नहीं चाहते, और जो वैष्णव होते हैं शिव जी की निंदा करते हैं और शिव जी को देखना भी, शिव जी के भक्तों को देखना नहीं चाहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने इन दोनों के झगड़ों को देखकर वो हंसने लगे, क्योंकि ये दोनों नहीं जानते हैं कि कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है और शिवजी कौन है। शिवजी भगवान कृष्ण के एक विशेष अवतार हैं, लेकिन विष्णु तत्व नहीं कहलाते। जैसे कि भगवान कृष्ण के अन्य अवतार हैं राम, नरसिंह इत्यादि, इनको विष्णु तत्व कहते हैं, क्योंकि हमेशा ये भौतिक गुणों से परे रहते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण एक विशेष रूप धारण करते हैं, जब वो इस भौतिक सृष्टि के तमोगुण का स्पर्श करते हैं, तब उनको शिवजी कहते हैं। तो शिवजी भगवान कृष्ण से अलग हैं भी और नहीं भी, जिस तरह से दूध में और दही में अंतर होता है। दूध में विकार आने से वो दही बन जाता है। तो जब भौतिक गुणों का स्पर्श हो जाता है तो वो रूप भगवान का शिवजी कहलाता है। लेकिन शिवजी भगवान का अवतार होते होते साथ साथ में महान वैष्णव भी हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो। इसलिए शिवजी को हमें कभी भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें उनको पूजनीय मानना चाहिए। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं शिवजी। इसलिए जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, शिवजी को नमस्कार हमेशा करते हैं, लेकिन उनको परम भगवान नहीं मानते, लेकिन फिर भी उनके चरणों में हमेशा दंडवत करते हैं, उनकी कृपा की याचना करते हैं। जितने भी बड़े वैष्णव तीर्थ स्थान हैं, उनके बाहर शिवजी का मंदिर है, क्योंकि शिवजी क्षेत्रपाल हैं, वो भगवान के तीर्थों के रक्षक हैं। इसलिए शिवजी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि शिवजी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण के धाम में हम प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए दोनों का स्थान जो है हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने समझाया उस ब्राह्मण को कि देखो कि कोई व्यक्ति अगर मुझे मानेगा लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानेगा तो वो ऐसे है जैसे कि कृष्ण की पूजा करता है लेकिन शिवजी की तिरस्कार करता है। तो ऐसे व्यक्ति कृष्ण भक्त होने के बावजूद उसे यमराज के दरबार में जाना पड़ेगा। तो इसलिए है ब्राह्मण, ये जान लो कि नित्यानंद प्रभु सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के लिए, सारे सृष्टि के लिए पूजनीय है, बल्कि मेरे लिए भी पूजनीय है। और अगर नित्यानंद प्रभु किसी मुसलमान युवती से विवाह करे या कोई दारू की दुकान में भी जाए, फिर भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी नित्यानंद प्रभु की तरह हम कुछ करें। नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं, किसी भी व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु की नकल करना नहीं चाहिए। वो दारू के दुकान में भी जाते थे, वेश्याघर में जाते थे प्रचार करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। हम ऐसे जगहों में जाएंगे तो उनका उद्धार नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमारे जीवन का खतरा हो जाएगा। इसलिए ऐसे जगहों से हमें बहुत दूर रखना है, पास में भी नहीं जाना है। दर्शन करने से भी हमारा मन विचलित हो सकता है, तो हमें इन जगहों से और ऐसे लोगों से जो कि ऐसे जगह में जाते हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु ने इतने जोर से कहा कि नित्यानंद प्रभु को मानकर ही आप मुझे प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए निताई गौरांग, नित्यानंद प्रभु बड़े भाई के बराबर हैं, इसलिए उनका नाम पहले आता है। और एक ऐसी छोटी सी घटना है कि चैतन्य चरितामृत लिखने वाले जो वैष्णव हैं, उनका नाम कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, वो भी बंगाल में रहा करते थे और उनके घर में दिन रात हमेशा कृष्ण कथा और कृष्ण संकीर्तन चलते रहता था। और एक बार ऐसे हुआ कि कई भक्त एकत्र हुए थे, कृष्ण संकीर्तन चल रहा था और नित्यानंद प्रभु वहां पर आए। और उस समय गुणार्णव मिश्र नाम के एक ब्राह्मण मूर्ति की पूजा कर रहे थे, भगवान कृष्ण की अर्चा विग्रह की आरती उतार रहे थे। तो जब नित्यानंद प्रभु आए तो उस ब्राह्मण ने नित्यानंद प्रभु को सम्मान नहीं दिया, बल्कि अपने आरती करते रहे। तो नित्यानंद प्रभु केवल हंसे, ज्यादा कुछ बोले नहीं वो। और वहां से वो, क्षमा कीजिए, नित्यानंद प्रभु ने मीनकेतन रामदास, जो कि नित्यानंद प्रभु के भक्त थे, वो वहां पर आए। निकेतन रामदास ऐसे भक्त थे नित्यानंद प्रभु के, अटूट श्रद्धा उनके ऊपर उनके हृदय में थी नित्यानंद प्रभु के प्रति। तो वो जब आए गुणार्णव मिश्र उठे नहीं, और उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बुरा लगा, क्योंकि ये निकेतन रामदास का अपराध मतलब नित्यानंद प्रभु का अपराध। अगर हम किसी सेवक का अपराध करते हैं इसका मतलब है कि प्रभु का अपराध भी होता है। इसलिए वैष्णवों का अपराध करना मतलब कृष्ण का अपराध करना। इसलिए वैष्णवों के प्रति कभी भी हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो उस समय निकेतन रामदास ने कहा कि देखो ये है और एक रोमहर्षण सूत। वो उस घटना की बात कर रहे थे जब कई साल पहले बलराम जी स्वयं द्वारका से दूर होकर, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध नहीं करना चाहते थे, वो तीर्थ यात्रा में निकल पड़े थे, और जब वो नैमिषारण्य में आए तो वहां पर रोमहर्षण सूत सारे ऋषि मुनियों को पौराणिक कथा सुना रहे थे। तो उस समय रोमहर्षण सूत जो कि व्यासासन पर बैठे, वो बलराम जी को देखकर उठे नहीं। उनको उठना चाहिए था, जब ऐसे स्वयं भगवान आए हैं और रोमहर्षण सूत उस व्यासासन पर बैठे रहे, तो बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने एक घास लिया, कुश घास, और उस घास फेंक दिया रोमहर्षण सूत के ऊपर, और रोमहर्षण सूत की मृत्यु हो गई। वो गिर पड़े, उनका देहांत तो हो गया। इसको देखकर हाहाकार मच गया सब जगह ब्राह्मणों के बीच में। अरे रे क्या हो गया, हाय हाय क्या हो गया, आपने क्या किया, हमने तो रोमहर्षण सूत को लंबे आयु का आशीर्वाद दिया था, अब हम सब ब्राह्मण हैं, हमने आशीर्वाद दे दिया है, अब क्या होगा। तो बलराम जी को बुरा लगा, उन्होंने कहा तो फिर क्या उन्हें पुनः जीवित कर दूं। तो ब्राह्मण ने सोचा, कहा नहीं नहीं, जो आपने किया अभी आपने कर डाला, अभी हमारा वचन रखने के लिए आपके कार्य को पीछे ले लें ये भी ठीक नहीं है, तो आप ही जो उचित समझे वो करें। तो बलराम जी ने कहा कि ठीक है, कहते हैं कि पुत्र पिता का अंश है, पिता अपने पुत्र के शरीर में रहता है, मतलब पिता का देहांत होने के बाद भी पुत्र के माध्यम से वो जी रहा है, तो जो भी आशीर्वाद आपने दिए हैं रोमहर्षण सूत को, मैं उनका स्थानांतर करता हूं उनके पुत्र में, जिनका नाम है सूत गोस्वामी। और आगे चल के सूत गोस्वामी ने इन ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत सुनाया। तो खैर निकेतन रामदास कहने लगे, ये देखो गुणार्णव मिश्र और एक रोमहर्षण सूत है, मैं यहां आया हूं, मैं नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधि हूं, नित्यानंद प्रभु वही बलराम है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सम्मान नहीं दिया, तो ये भी रोमहर्षण सूत के बराबर है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत मानते थे, लेकिन उस ब्राह्मण की तरह जिनकी लीला हमने पहले सुनाई, वो नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते थे। और उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने भाई को डांटा कि क्या तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है, नित्यानंद प्रभु कौन है तुम्हें नहीं मालूम, केवल तुम चैतन्य महाप्रभु के चरणों में श्रद्धा रखोगे और नित्यानंद प्रभु की परवाह नहीं करोगे तो तुम कहीं कभी नहीं रह जाओगे। लेकिन उनके भाई ने बात नहीं मानी और नित्यानंद प्रभु के चरणों में और उनके भक्तों के चरणों में अपराध करने के वजह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई का भक्ति से पतन हो गया। लेकिन नित्यानंद प्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ऊपर प्रसन्न हुए और उसी रात को नित्यानंद प्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी के सपने में आए, बिल्कुल तेजस्वी रूप, नीले रंग के कपड़े, नाना प्रकार के सुंदर से सुंदर आभूषण पहने हुए धारण किए हुए आए और पान चबाते हुए, और उनके सुंदर कमल नयन गोल गोल घूम रहे थे मानो कि एक उन्मत्त हाथी झूम रहा है, कृष्ण कृष्ण कहते हुए हाथ ऊपर किए हुए वो कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। और ऐसे अवस्था में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनका स्वप्न में दर्शन किया और वो कहने लगे, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, और कहने लगे जाओ वृंदावन, वहां तुम्हारे सारे इच्छाओं की पूर्ति होगी। उस समय नित्यानंद प्रभु के इर्द गिर्द बहुत सारे ग्वाल बाल थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम है। बलराम जी कृष्ण भगवान के साथ में वृंदावन में गाय चराते हैं, उनके मित्र कौन है? ग्वाल बाल है। तो नित्यानंद प्रभु भी ऐसे ही एक ग्वाल बाल के वेश में थे और उनके इर्द गिर्द और सारे मधुमक्खी की तरह, भंवरों की तरह और ग्वाल बाल घूम रहे थे। और नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया कि जाओ वृंदावन। उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी नींद से जागे और बाएं दाएं ऊपर नीचे न देखते हुए पलंग से उठते ही सीधे चले गए वृंदावन की ओर। बंगाल से कोई टिकट का रिजर्वेशन लेना ऐसे इसके लिए रुके नहीं, कुछ जाने के रास्ते में कुछ भोजन प्रसाद पैक करके ले जाएं, नहीं, सीधे उठे चले गए वृंदावन की ओर, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का आदेश था। और चलते चलते वृंदावन में जाकर उन्होंने आश्रय लिया रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का। और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हमें वृंदावन धाम का आश्रय मिला, हमें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का आश्रय मिला। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु को कभी भी हमें गलत नहीं समझना चाहिए। दोनों नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को हमें मानना चाहिए। इसलिए निताय और गौरांग इन दो नामों का उच्चारण करने से सारे जगत का कल्याण होगा। अभी आपके मन में यह प्रश्न आएगा, जब हरे कृष्ण महामंत्र है तो नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के नाम के उच्चारण करने का क्या फायदा है? क्या केवल हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से काम नहीं चलेगा? इसका जवाब यह है कि कृष्ण नाम लेने में अपराध होता है हमसे। भगवान के नाम के प्रति 10 अपराध होते हैं, और जब हम नाम अपराध करते हैं तो हमारी भक्ति में ये अड़चन बन जाते हैं। और अपराध के साथ में नाम करते करते हम करोड़ों जन्मों तक भी करते रहें, लेकिन हो सकता है कृष्ण प्रेम नहीं मिले, बहुत लंबा समय लग सकता है। लेकिन जब हम निताई और गौरांग इनका नाम लेते हैं तो इसमें कोई अपराध नहीं है, क्योंकि ये दोनों भगवान के इतने कृपालु रूप हैं कि अपराध स्वीकार ही नहीं करते हैं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के पहले हम एक और महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जिसको पंच तत्व महामंत्र बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो हर एक माला जप करने के पहले या कीर्तन करने के पहले हम ये पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं, और उसमें चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु इत्यादि इनकी कृपा याचना हम करते हैं। इनकी कृपा से हम अपराध रहित हो सकते हैं, अपराध क्षमा हो जाते हैं। तो निताय गौरांग बड़े कृपालु हैं, हमें मदद कर सकते हैं कि हम शुद्ध कृष्ण नाम का उच्चारण करें। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई ऐसे अपसंप्रदाय हैं जो गौड़ीय वैष्णव से अलग हो गए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़कर उन्होंने अपने अपने मंत्र बनाए हैं मनगढ़ंत ढंग से। इससे सिद्धि नहीं मिल सकती, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जो शास्त्रों के आधार से वो मंत्र बनाया है उसी मंत्र का उच्चारण हमें करना चाहिए। लेकिन आप में से जो जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए गए हैं, आपने देखा होगा कि हरिदास ठाकुर के समाधि में वहां कई लोग हैं जो एक मंत्र का 24 घंटा कीर्तन करते हैं। जानते हैं आप में से कोई वो मंत्र? भज निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। ये मंत्र कभी शास्त्र में नहीं है, इन्होंने मनगढ़ंत ढंग से इस मंत्र को निकाला है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी शिक्षा नहीं दी थी इसलिए प्रामाणिक नहीं है। परंतु फिर भी इन लोगों को कुछ तो फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि निताई और गौर का नाम ले रहे हैं। भजन निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। कृष्ण और राम के नाम के उच्चारण में अपराध तो हो रहे हैं, लेकिन निताय और गौरांग इनका नाम का उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए उनको लाभ मिल रहा है, फिर भी वो प्रगति करेंगे। तो जो व्यक्ति प्रामाणिक ढंग से प्रामाणिक मंत्रों का उच्चारण करता है, प्रामाणिक भक्तों के संग में आके कृष्ण कथा सुनता है, कृष्ण कीर्तन करता है, भगवान की सेवा करता है, और साथ साथ निताय गौर इन पवित्र नामों का उच्चारण करता है, तो कितना उसका उद्धार हो सकता है, कितनी प्रगति वो कर सकता है। तो आजकल के लिए भगवान के अवतार ये दो हैं, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है, नित्यानंद त्रयोदशी। जन्म दिवस पर भगवान बड़े कृपालु ज्यादा हो जाते हैं, वैसे भी नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं, और आज उनके आविर्भाव तिथि पर और ज्यादा कृपालु हैं। तो हमें इस मौके का फायदा उठाना है, उनके चरणों में हम प्रार्थना हम कर सकते हैं कि कृपा करके हमारे हृदय में जो भी अनर्थ है उनको नष्ट कर दीजिए। आपके चरणों के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के चरणों के प्रति हमें तीव्र निष्ठा प्रदान कीजिए, और हमारे हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम पैदा कीजिए। ऐसी प्रार्थना आज हम कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु की, श्री गौरांग महाप्रभु की। तो वैसे तो बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन आपके अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में हम नित्यानंद प्रभु के खुशी के लिए उनकी आरती करेंगे, साथ साथ में उनके प्रसन्नता के लिए संकीर्तन होगा, और फिर उनको भोग दिखाया हुआ प्रसाद का सेवन हम सब कर पाएंगे। ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से क्या अपराध होता है? हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से अपराध नहीं होता, बोलने में अपराध हो सकता है। मतलब हम गलत ढंग से बोलते हैं, जब हम गलत ढंग से बोलेंगे तो फिर नाम अपराध हो जाते हैं। 10 नाम अपराध कौन से हैं? हर रोज सुबह को मंगल आरती के बाद यहां मंदिर में हम इन 10 नाम अपराधों का वर्णन करते हैं। तो आप में से एक एक करके नाम अपराध बता सकते हैं? भगवान के पवित्र नामों के प्रति जो 10 नाम अपराध हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला नाम अपराध क्या है, कोई बताएंगे? जोर से ध्यान बोलिए, माइक दीजिए। चलो ठीक है, पहला नाम अपराध है
भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना। और
भक्त कोई बोलिए। पहला नाम अपराध भगवान के प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, मतलब वैष्णव अपराध करना। अगर हम अन्य भक्तों की निंदा करते हैं तो वो निंदा हमारे हरिनाम के जप में और कीर्तन में एक बंधन बन जाएगा, एक अड़चन बन जाएगी, ये भी नाम अपराध हो जाता है। इसलिए हमें कीर्तन में जप में आनंद नहीं आता, ये पहला नाम अपराध है। दूसरा नाम अपराध, माइक।
शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान समझना अथवा उससे स्वतंत्र समझना।
हाँ, शिव ब्रह्मा गणेश दुर्गा इत्यादि इन सब के नाम को भगवान से समान या स्वतंत्र समझना, दूसरे शब्दों में देवी देवताओं को भगवान मानना। अगर हमारे हृदय में यह भावना रही कि कृष्ण भगवान भी दूसरों की तरह भगवान है, तो ये भी एक हरि नाम के प्रति अपराध हो जाता है। तीसरा नाम अपराध, गुरु की अवज्ञा, गुरु के आदेश का पालन नहीं करना। चौथा, नहीं बोलिए, आप रोज बोलते हैं, और कौन बोलेंगे, बोलो। चौथा नाम अपराध, लिस्ट सबको दे दीजिए, है ना अपने पास? ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को इसको गौर से पढ़ना चाहिए। जितने हैं वो बांट दीजिए। लेकिन कृपया ये वापस आप देकर जाइए, ये घर लेकर मत जाइए। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन मतलब सोचना कि ठीक है हम भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन ये गीता भागवत ये सब क्या है, ये सब ऐसे ही काल्पनिक चीजें हैं, किसी आदमी ने बैठकर गुफा में इसको लिखी है, उन्हें श्रद्धा नहीं होना। पांचवा नाम अपराध है, माइक में बोलिए, माइक में
के जप को काल्पनिक समझना।
नहीं, हरे कृष्ण जप के जप को नहीं, उसकी महिमा को काल्पनिक समझना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, क्योंकि केवल भगवान का नाम जप कीर्तन करने से कृष्ण प्रेम मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति सोचेगा कि अरे केवल भगवान का नाम लेने से इतना कुछ हो सकता है, संभव नहीं है, तो ये भी एक नाम अपराध है। फिर छठा नाम अपराध,
भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप।
पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप मतलब भगवान के नाम को कोई अलग अर्थ दे देना अपने मनगढ़ंत ढंग से। कोई विद्वान है, कृष्ण का नाम ऐसा है वैसा है, इसका मतलब ये है, कुछ भी अपने अपने बुद्धि से उसको कोई अलग ही मतलब दे देना, वो भी एक नाम अपराध है। सातवां नाम अपराध,
नाम के बल पर पाप करना।
नाम के बल पर पाप करना, हे प्रभु आपके नाम जप कीर्तन करने से सारे हमारे पाप धुल जाते हैं, तो मैं जाकर थोड़ा पाप करता हूँ, फिर आके आप जप करूंगा, पाप को धो डालूंगा, फिर से पाप करूंगा, तो ये भी एक अपराध होता है। तो जो ऐसे व्यक्ति करता है उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता है। आठवां नाम अपराध,
हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना।
हरे कृष्ण महामंत्र के जप को कर्मकांड के बराबर समझना। कर्मकांड क्या होता है? कर्मकांड वेदों का एक भाग है जिसमें हमें ऐसे आदेश दिए जाते हैं कि ये देवी की उपासना करने से आपको ये लाभ मिलेगा, वो देवता की उपासना करने से आपको ये लाभ मिलेगा, भौतिक लाभ। लेकिन भक्ति में और कर्मकांड में जमीन आसमान का अंतर होता है। भक्ति हम क्यों करते हैं? केवल भगवान की सेवा करने के लिए, इसमें कोई भौतिक अपेक्षा हम नहीं करते हैं, ये है शुद्ध भक्ति। तो हरे कृष्ण महामंत्र ये शुद्ध भक्ति का एक अंग है, और जो व्यक्ति इस महामंत्र के जप और कीर्तन को भगवत भक्ति को एक कर्मकांड समझेगा तो वो भी एक नाम अपराध है। नौवा नाम अपराध कौन सा है?
अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना।
अश्रद्धालु व्यक्तियों को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। जो व्यक्ति हरि नाम के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिनकी श्रद्धा नहीं है, उनको केवल साधारण से साधारण ज्ञान देना चाहिए, आत्मा शरीर इत्यादि। ज्यादा विस्तार में भगवान नाम के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए आप जप कीजिए कीर्तन कीजिए, लेकिन ज्यादा महिमा का वर्णन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि फिर वो निंदा करना शुरू करेंगे, अरे आप कैसे बोलते हो ऐसा वैसा, फिर उनके प्रति अपराध हो जाएगा। तो दसवां नाम अपराध कौन सा है?
भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और उसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयाशक्ति बनाने रखना।
भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना, हम इतने सालों से भी जप करते आए हों, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं है कि हरि नाम से हमारा सब कुछ हो सकता है, फिर भी हमें लगता है ठीक है हम जप कर रहे हैं, लेकिन जप के अलावा भी और कोई चीज हमें चाहिए, और इस विषय में इतने सारे आदेश सुनने के बाद भी विषय आसक्ति बनाए रखना, इंद्रिय भोग की इच्छा को त्यागना नहीं। हम भक्ति भी करना चाहते हैं, संसार का भोग भी करना चाहते हैं, तो ये एक नाम अपराध हो जाएगा। ऐसी भावना अगर हमारे अंदर है तो शुद्ध नाम का उच्चारण हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो ये 10 नाम अपराध हैं, लेकिन इन 10 नाम अपराधों की एक जननी है, एक माता है, वो कौन सा अपराध है? ध्यान पूर्वक जाप न करना, ये भी एक अपराध माना जाता है। हम जप कर रहे हैं लेकिन सो रहे हैं, जप करते समय हम कुछ और सोच रहे हैं, हम आगे चल के क्या बोलेंगे, किसने हमसे क्या बात की थी, आज हम प्रसाद में क्या खाने वाले हैं, तो ध्यान से हम जप नहीं करेंगे तो ये भी एक नाम अपराध माना जाता है। और अपने आप को वैष्णव कहने वाले भक्त को इन अपराधों से बच के रहना चाहिए, जिससे शीघ्र अभीष्ट सिद्धि यानी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो इतने सारे 10 नाम अपराध होते हैं, लेकिन निताय गौर में कोई अपराध नहीं। कोई भी बोले वो उसे मालूम भी नहीं कि निताय कौन है, गौरांग कौन है, लेकिन बोले वो निताय गौर निताय गौर। जैसे एक भक्त आए थे स्वरूप दामोदर प्रभु, अमेरिका से आए थे, तो एक बहुत ही सुंदर घटना बता रहे थे। अमेरिका में 1-2 साल पहले वहां चुनाव हुआ अमेरिका में, तो राष्ट्रपति के पद के लिए 2 प्रमुख व्यक्ति थे, उनमें से एक व्यक्ति का नाम है गोर, एल गोर, वो भी स्पर्धा में था। तो ये एल गोर नाम के व्यक्ति के जो सहायता करने वाले थे या उनके पीछे जो लोग थे, उनके सपोर्ट में नारे लगा रहे थे, विक्ट्री टू गोर, मतलब गोर की जीत हो, अंग्रेजी में विक्ट्री टू गोर। तो उस समय हमारे हरे कृष्ण मंदिर के भक्त नगर संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए, और उस समय ये यहां से उनका जुलूस निकला, विक्ट्री टू गोर, विक्ट्री टू गोर, गोर की जीत हो। तो वहां एक भक्त को एक आइडिया सूझा, उन्होंने जाके कहा, आप गोर की जीत के लिए बोल रहे हो ना, हमारी भाषा में हम कहें? हाँ बोलो बोलो। तो बोला, आप सब बोलो निताय गौर निताय गौर निताय गौर। तो जो भी एल गौर के लिए जय जयकार कर रहे थे, अभी निताय गौरांग का नाम में जय जयकार करने लगे, तो उनको भी कितना लाभ हो गया। हालांकि उनको मालूम भी नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं, निताय कौन है, वो मन में गौर वो राष्ट्रपति के व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे, लेकिन गौरांग का नाम लिया उन्होंने, नित्यानंद प्रभु का नाम लिया। तो इतने कृपालु है निताय गौर, जो भी उनका नाम लेता है उनका लाभ होता है।